महावेदी समद्विबाहु चतुर्भुज शुल्ब सूत्रों में यह वेदी अति महत्वपूर्ण है। इस वेदी का संबंध सोम याग से है, अतः इसे सौमिकी वेदी भी कहते हैं। इसकी रचना समद्विबाहु चतुर्भुज होती है। शतपथ ब्राह्मण बौधायन शुल्ब सूत्र और आपस्तंभ शुल्ब सूत्र में इसका नाम दिया गया है। इसका मुख पूर्व दिशा की ओर होता है। लंबाई चौड़ाई का विवरण यह है, एक लंबाई 36 पग या पद, दो चौड़ाई पूर्व दिशा 24 पग, 24 गुणे 2 बराबर 48 फीट, 24 माइनस 24 फीट के दो भाग, तीन चौड़ाई पश्चिम दिशा 24 धन 6 बराबर 30 पग, 30 गुणे 2 बराबर 60 फीट, 30 फीट के दो भाग। इसमें 72 फीट लंबा और 48 फीट चौड़ा एक चतुष्कोण निकलता है। पश्चिम की ओर की चौड़ाई 6 पग अर्थात 12 फीट बढ़ जाती है, अतः 48 धन 12 बराबर 60 फीट हो जाती है। पश्चिम के मध्य भाग से दोनों ओर 30 फीट, इस प्रकार पूर्व और पश्चिम के कोण 48 एवं 60 फीट होने के कारण विषम कोण हैं। उत्तर और दक्षिण के भाग सम हैं, अतः समद्विबाहु चतुर्भुज हो जाता है। शुल्ब सूत्रों में पद के लिए प्रक्रम और विक्रम शब्द है। यह सोमयाग की वेदी है, अतः इसका बहुत महत्व है। शुल्ब सूत्रों में यह सबसे बड़ी वेदी है। इसका परिमाण 972 वर्ग पद माना गया है। इसकी विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सौत्रामणि याग की वेदी इसकी तिहाई अर्थात 324 वर्ग पद होती है और पैतृकी याग की वेदी इसका 27वां हिस्सा अर्थात 36 वर्ग पद होती है। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि जो सामान्य सप्तविध वेदी है उससे यह महावेदी 14 गुनी बड़ी होती है। लंबाई के लिए 36 पग लंबी रस्सी लेते हैं। पूर्व की चौड़ाई नापने के लिए 24 पग लंबी रस्सी का प्रयोग होता है और पश्चिम लंबाई के लिए 30 पग लंबी रस्सी ली जाती है। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर दोनों छोरों को नापने के लिए रस्सी बिछाकर ईंटें लगाई जाती हैं। प्रत्येक वेदी में किस प्रकार की कितनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाली कितनी ईंटें लगेंगी इसका भी विवरण ब्राह्मण ग्रंथों और शुल्ब सूत्रों में दिया गया है। कर्ण निकालने की विधि पाइथागोरस प्रमेय। बौधायन आपस्तंभ और कात्यायन शुल्ब सूत्रों में आयत के कर्ण के विषय में कहा गया है कि आयत का कर्ण दोनों क्षेत्रफलों को उत्पन्न करता है जिससे उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग उत्पन्न करती है। दीर्घ चतुरस्त्र क्षाक्षणया रज्जु स्त्रियंगमानि पार्श्वमानि च यत् पृथक भूते कुरुतः तदुभयं करोति क्षेत्र ज्ञानम्। बौधायन शुल्ब 1.48 का कात्यायन शुल्ब 2.11 आपस्तंभ शुल्ब 1.7 अर्थात किसी आयत के कर्ण पर खींचा गया वर्ग क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है जो दोनों भुजाओं पर खींचे जाएं। उक्त सूत्र में दीर्घ चतुरस्त्र का अर्थ है आयत, अक्षण्या रज्जु का अर्थ तिरछा नापना, एक कोने से तिरछे दूसरे कोने तक नापना, तिरंग मानी चौड़ाई, पार्श्व मानी लंबाई। यदि एक आयत को बीच में से तिरछा काटा जाए तो उसमें से दो विषम बाहु त्रिभुज निकलेंगे। दोनों का पृथक पृथक जितना क्षेत्रफल निकलेगा उसका योग ही आयत का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार एक आयत दो त्रिभुजों का जोड़ा मानना चाहिए। कात्यायन शुल्ब सूत्र में इस बात की दो अन्य सूत्रों के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो तो कर्ण क्या होगा। एक, यदि चौड़ाई एक हो और लंबाई तीन हो तो उसका कर्ण 10 का वर्गमूल होगा, अर्थात चौड़ाई और लंबाई दोनों का वर्ग करके जोड़ लो वही कर्ण का वर्ग होगा। क घातांक धन ख घातांक बराबर ग, यदि चौड़ाई क है और लंबाई ख है तो कर्ण ग का वही वर्गमूल होगा, जैसे 1/2 गुणे 3/2 बराबर 10 का वर्गमूल अर्थात 1/1 बराबर 1 और 3/3 बराबर 9, 1 × 9 बराबर 10, 10 का वर्गमूल 3.3 या चौड़ाई 1 और लंबाई 3 का कर्ण हुआ। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया है कि यदि किसी आयत की चौड़ाई 2 पद हो और लंबाई 6 पद हो तो उसका कर्ण 40 का वर्गमूल होगा। 2 और 6 का वर्ग निकालकर जो जोड़ होगा वह कर्ण का वर्ग होगा। 2/2 गुणे 6/2 बराबर 40 अर्थात 2/2 बराबर 4, 6/6 बराबर 36, 36×4=40, यह कर्ण का वर्ग हुआ। इसका वर्गमूल निकालने पर 6.66 पद कर्ण हुआ। शुल्ब सूत्रों में कर्ण के लिए कर्णी शब्द का प्रयोग है। आर्यभट्ट आदि ने कर्ण के लिए कर्ण शब्द ही दिया है। क पदम तिर्यंगमानी त्रिपदा पार्श्वमानी तस्याक्षणया रज्जुर्दर्श करणी। ख एवं द्विपदा तिर्यंगमानी षट्पदा पार्श्वमानी तस्याक्षणया रज्जुः चत्वारिंशत् करणी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में इस बात को और अधिक सरल शब्दों में स्पष्ट किया है कि समकोण त्रिभुज में भुजा के वर्ग और कोटि के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई के वर्ग का योग ही कर्ण का वर्ग है। क घाते दो धन ख घाते दो बराबर ग घाते दो। यश्चैव भुजा वर्ग कोटि वर्गस्य कर्ण वर्ग सह। आर्यभट्टीय गणित पाद 17। यह प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस प्रमेय का ज्यामिति में बहुत महत्व है। पाइथागोरस प्रमेय का यह है दैट द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स। अर्थात समकोण त्रिभुज के कर्ण के ऊपर खींचा गया वर्ग दो समकोण त्रिभुजों के वर्ग के बराबर होता है। शुल्भ सूत्रों के उपर्युक्त उदाहरणों के स्पष्ट है कि यह पूरा नियम बौधायन आपस्तंभ और कात्यायन शुल्भ सूत्रों को वैदिक काल में ही ज्ञात हो चुका था। ग अनुक्रमणिया वेदों की रक्षा के लिए जो विविध उपाय किए गए उनमें यह अनुक्रमणीय साहित्य भी है। इन अनुक्रमणियों में प्रत्येक वेद के ऋषि देवता छंद अनुवाक सूक्त आदि का उल्लेख है। इतना ही नहीं अपितु इसके आगे जाकर उन्होंने मंत्रों की संख्या पदों की संख्या और कर्ण वर्णों की संख्या तक की गणना प्रस्तुत की है। अतएव वेदों में किसी प्रकार का प्रक्षेप नहीं हो सका। प्रमुख अनुक्रमणी ग्रंथ ये हैं। एक शौनक कृत 5 अनुक्रमणिया। शौनक ने 5 अनुक्रमणियों की रचना की है। ये हैं एक आशानुक्रमणी 2 छंदोनुक्रमणी 3 देवतानुक्रमणी 4 अनुवाक अनुक्रमणी 5 सुक्तानुक्रमणी। इनमें ऋग्वेद के 10 मंडलों के ऋषियों छंदो देवताओं अनुवाकों और सुक्तों की संख्या नाम तथा विस्तृत विवरण अनुष्टुप श्लोकों में दिया गया है। 2 ऋग्विधान यह भी शौनक की कृति है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का विभिन्न याग आदि में विनियोग बताया गया है। 3 बृहद देवता यह भी शौनक की कृति है। यह अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 8 अध्यायों में 1200 पद हैं। इसमें देवताओं का स्वरूप उनका स्थान और उनकी विशेषताओं का वर्णन है। इसमें देवों से संबद्ध आख्यानों का भी संकलन पद्यों में है। यह देवशास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ है। कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में बृहद देवता का बहुत उपयोग किया है। 4 सर्वानुक्रमणी यह कात्यायन की कृति है। इसमें ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त के प्रथम पद प्रत्येक सूक्त में ऋचाओं की संख्या सूक्त के ऋषि का नाम और उसका गोत्र सूक्त के मंत्रों के देवता और छंदों का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह सूत्र शैली में है। यह अति प्रसिद्ध और प्रामाणिक ग्रंथ है। 5 ऋग्वेदानुक्रमणी यह माधव भट्ट की कृति है। इसमें ऋग्वेद के स्वर आख्यात निपात शब्द ऋषि छंद देवता और मंत्रार्थ से संबद्ध 8 अनुक्रमणियों का संग्रह है। 6 शुक्ल यजु सर्वानुक्रमण सूत्र इसके भी रचयिता कात्यायन मुनि ही माने जाते हैं। इसमें शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिन संहिता के ऋषि देवता और छंदों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 7 सामवेद की अनुक्रमणियां सामवेद के शौत्याग से संबद्ध अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं जो सामवेद की अनुक्रमणी का कार्य सिद्ध करते हैं। ये हैं कल्पानुपद सूत्र उपग्रंथ सूत्र अनुपद सूत्र निदान सूत्र उपनिदान सूत्र पंचविधान सूत्र लघु ऋक्तंत्र संग्रह साम सप्त लक्षण। 8 अथर्वेद की अनुक्रमणिया अथर्वेद की अनुक्रमणियों में ये ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। 1 पंचपटलिका इसमें 5 पटल हैं। इसमें अथर्वेद के कांडों और उनमें मंत्रों की संख्या का विवरण दिया गया है। 2 दंत्योष्ट विधि इसमें ब व आदि के उच्चारण संबंधी नियमों का निर्देश है। 9 बृहत सर्वानुक्रमणी यह अथर्वेद की अनुक्रमणी है। इसमें प्रत्येक कांड के सूक्तों के मंत्र ऋषि देवता एवं छंदों का विस्तृत विवरण दिया गया है। अथर्वेदीय साहित्य में यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 10 अथर्वेदी महत्वपूर्ण ग्रंथ सायण ने अथर्व भाष्य के प्रारंभ में इन 5 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ये हैं 1 कौशिक सूत्र 2 वैतान सूत्र इनका विवरण दिया जा चुका है। 3 नक्षत्र कल्प इसमें 30 महाशक्तियों का वर्णन है। 4 अंगिरस कल्प इसमें आत्मरक्षा और अभिचारों के निवारण के उपाय वर्णित हैं। 5 शांतिकल्प, इसमें ग्रह शांति का वर्णन है। 11 चरण व्यूह सूत्र, यह महर्षि शौनक रचित है, इसमें 5 खंड हैं। इसमें चारों वेदों की शाखाओं का विस्तृत विवरण है, अतः यह महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। 12 नीति मंजरी, इसके लेखक द्वादविवेद हैं। इसमें ऋग्वेद के आख्यानों का संकलन है, साथ ही आख्यानों से प्राप्त होने वाली शिक्षाओं का भी उल्लेख किया गया है। इसकी रचना 1494 ईस्वी में हुई है। अर्वाचीन रचना होने पर भी आख्यान साहित्य की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है।